ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. அபி ஹம் சப்னே பூர்வ மே ஆதரணிய பிந்து தீதி கே துவாரா பகுத் ஹி சுந்தர் ரூப் மே பிராமண ஜீவன் கி சூக்ஷ்ம மரியாதாவோ பர் ஹம் சப்னே விசார் சுனே ஔர் உன் மரியாதாவோ கோ ஹம் ஜீவன் மே அப்னாயேங்கே பி சாத் ஹி சாத் அப் ஹமாரே பீச் மே मैं ससम्मान निवेदन करूंगी. हम सबके बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी. आपका नाम ही आपका परिचय देता है, आपके नाम में ही परिचय समाया हुआ है. ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले आत्म प्रकाश भाई जी, मैं भाई जी के लिए शब्द कहूंगी. ज्ञान की किरणें बांटते हैं, ज्ञान की किरणें बांटते हैं, सच्चाई की राह दिखाते हैं. जिनकी वाणी अमृत रस बरसाती है वही आत्मा आत्म प्रकाश भाई जी कहलाते हैं, वही आत्म प्रकाश भाई जी कहलाते हैं. ऐसे हमारे अति प्रिय आत्म प्रकाश भाई जी का बहुत बहुत हम एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं. बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. और मैं आपका परिचय आप सबके बीच में दूं कि आप भाई जी 1972 से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेड क्वार्टर पर आप 1976 से हैं यहाँ पर समर्पित रूप से. दो चीजें हैं हमारे यज्ञ में, बोली और टोली. तो नाम में तो बोली है ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, और आप टोली के आप इंचार्ज भी हैं, टोली डिपार्टमेंट के आप पूरा संभालते हैं. साथ ही साथ आपने 103 देशों में बाबा का झंडा बुलंद किया है, आवाज चारों तरफ बाबा का संदेश फैलाया है. आप यूथ विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, साथ ही साथ आपने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है भाई जी ने. गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप. एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें भाई जी का, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं. तो ऐसे हमारे प्यारे अति प्रिय आत्म प्रकाश भाई जी का बहुत बहुत फिर से अभिनंदन. और हम साथी और साक्षी स्थिति कैसे बने उसके लिए हम सबके बीच में विचार रखेंगे और उस चीज को हम सभी आत्मसात करेंगे सभी ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये समय कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी सुस्ती उसका आने का समय, इसलिए आप सभी थोड़ा सा फ्रेश होकर के बैठे ठीक से, अपनी कमर को भी सीधा करते हुए, जिससे आप ज्ञान के प्रकाश को जीवन में अपने अंदर भी ला सकें, कोई भी सुस्ती ना करें, तब आपको आनंद आएगा. ओम शांति भाई जी का फिर से अभिनंदन.
ओम शांति. साक्षी और साथी स्थिति. ब्राह्मण जीवन में निरंतर योगी बनना यह हमारा लक्ष्य है. निरंतर योगी बनने के लिए साक्षी अवस्था अनुभव करना बहुत जरूरी है. साक्षी बनकर बाबा को साथी अनुभव करना, यही हम सभी का लक्ष्य है. यही ऊंची अवस्था हमने प्राप्त करनी है. इसलिए बाबा मुरली में भी कहते हैं, बच्चे साक्षी दृष्टा बनो। साक्षी दृष्टा का सरल भाव यही है कि जो भी हमारे सामने घटता है, परिस्थितियां आती हैं, उनको देखते समय उनके प्रभाव से न्यारे रहना, उनके प्रभाव से निर्लिप्त रहना, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना। इसमें तीन बातें हैं, दृष्टि, दृष्टा और दृष्टांत। दृष्टा है आत्मा, दृष्टि है आंखों रूपी खिड़कियों से हमारी दृष्टि ऑटोमेटिक बाहर आती है। और जब हम साक्षी दृष्टा बनकर रहते हैं, इस स्थिति का बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं, तो हमारा कोई दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने ये स्थिति अपनाई थी, अनुभव की थी, इसलिए मम्मा बाबा का दृष्टांत दूसरों के सामने रखते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य ही है मधुबन में आकर ऐसी सुंदर स्थिति का अनुभव मुझे करना ही है। साक्षी दुष्टा बनकर बाबा को साथी अनुभव करना, ठीक है। तो अभी साक्षी दुष्टा स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ एक बातों पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, साक्षी दृष्टा स्थिति अनुभव करने के लिए बेहद के वैराग्य की अनुभूति बढ़ाना जरूरी है। बाबा कहते भी हैं, योगी आत्माओं की नजर दृष्टि किसी चीज में डूबती नहीं है। तो जितना वैराग्य हम अनुभव करते हैं पुरानी दुनिया से, उतना परमात्मा से हमारा अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता है। तो ये पुरानी दुनिया में रहते हुए हमें ऐसा अनुभव करना है कि इस पुरानी दुनिया में मैं मेहमान हूं, थोड़े समय का मेरा पार्ट इसमें बचा हुआ है, मुझे यहां से घर जाना है। जब बुद्धि में बात बैठ जाती है मुझे यहां से घर जाना है, तो बुद्धि रूपी लंगर हमारी यहां से उठने लगती है और साक्षी दृष्टा की अनुभूति हम सहज अनुभव करने लगते हैं, है ना। जितना इस दुनिया से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना इस दुनिया से डिटैच उतना बाबा से अटैच अनुभव करते हैं। दूसरी बात, साक्षी दृष्टा स्थिति बढ़ाने के लिए समय का ज्ञान सदा बुद्धि में हमें रखना है। अभी जो समय चल रहा है वो अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। ऐसे समय में हमें उड़ती कला की अनुभूति करते रहना जरूरी है। तो उसके लिए उड़ता पंछी बनना होगा, तो उमंग उत्साह के पंख हमारे मजबूत अनुभव करने होंगे। इसीलिए जितना हम इस पुरानी दुनिया से साक्षी अनुभव करते हैं उतना उड़ती कला की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। अगर ड्रामा के अनुसार हम साक्षी दृष्टा बने, परिस्थितियां बहुत गंभीर हमारे सामने आती है, उस समय हम रियलाइज करते हैं अभी तो किसी भी हालत में मुझे साक्षी दृष्टा बनना होगा। तो ड्रामा अनुसार अगर हम साक्षी दृष्टा बनेंगे तो ड्रामा को मार्क्स मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें समय के पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति अनुभूत करना जरूरी है। तीसरी बात, साक्षी दृष्टा स्थिति बढ़ाने के लिए वानप्रस्थ अवस्था हमें बुद्धि में रखना है। चाहे किसी की आयु छोटी हो किसी की बड़ी आयु हो, लेकिन सभी की वानप्रस्थ अवस्था चल रही है, क्योंकि कभी भी ड्रामा का अंत हो सकता है। वानप्रस्थ अवस्था अनुभव करना अर्थात वाणी से परे जाना। जब हम वाणी से परे हो जाते हैं तो निर्वाण धाम की स्मृति हमें सहज आती है, और निर्वाण धाम में रहने वाले शिव बाबा को साथी हम सहज अनुभव करते जाते हैं। हमने देखा ब्रह्मा बाबा वाणी में आने में रुचि नहीं रखते थे, एकदम वानप्रस्थ अवस्था की अनुभूति करते थे, इसलिए वाणी से परे रहते थे। अंत समय बाबा की जो स्थिति थी वानप्रस्थ अवस्था, उस समय हर कोई अनुभव करता था बाबा बहुत कम वाणी का प्रयोग करते थे। तो ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जितना आवश्यक है उतना ही हम वाणी का प्रयोग करें और उससे डिटैच रहे, परे रहे, ठीक है। चौथी बात, वानप्रस्थ अवस्था को बढ़ाने के लिए सदा बुद्धि में रखना है ये पुरानी दुनिया कब्रस्थान बन चुकी है। सभी देहभान में रहते हैं, देहभान की बातें करते हैं, देह के पदार्थों में आकर्षित होते हैं, तो देह भान अर्थात स्वयं को वो मुर्दा ही समझते हैं। ये मुर्दों की दुनिया है, चलते फिरते सभी मुर्दे हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान उनको है ही नहीं। वैसे भी इस पुरानी दुनिया में कब्रस्थान में जाने की किसी की रुचि नहीं होती है, स्मशान भूमि जा क्या करेंगे, वहां किसी कारण मजबूरी से जाना होता है वो बात अलग है, लेकिन रुचि किसी की नहीं होती है। एक बार रमेश भाई जी बॉम्बे में ब्रह्मा बाबा को कार में लेकर घुमा रहे थे, तो बाबा ऐसे ही बैठे थे, तो रमेश भाई जी बाबा को कहते थे, बाबा ये देखो कितनी सुंदर ये बॉम्बे की नगरी है। तो बाबा ने कहा ये क्या मुर्दों की दुनिया, कब्रस्तान की दुनिया देखनी है, ये तो चलते फिरते मुर्दे ही है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। तो हमें भी बुद्धि में रखना है, इस कब्रस्तान से बुद्धि को हटाना है, साक्षी दृष्टा बनना है, तभी बाबा को साथी अनुभव कर सकेंगे। पांचवी बात, दुनिया में गीत गाते हैं, पत्थर से दिल लगाया सीने में चोट खाई, तो ये पुरानी दुनिया पत्थर दिल वालों की ही है, पारस बुद्धि वालों की नहीं है। तो इस पुरानी दुनिया से दिल लगाना अर्थात दुख और अशांति की ही अनुभूति करना होता है। तो हम देखते हैं इस पुरानी दुनिया में सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है, सभी मतलब से बातें करते हैं, मतलब पूरा हो गया तो किसी को कोई पहचानता भी नहीं है। इसलिए ऐसी पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं रखा है, असार संसार है, नीरस दुनिया है, तो इससे क्या दिल लगाएं? इसलिए इससे साक्षी होकर हमें रहना है। छठवीं बात है, वानप्रस्थ अवस्था बनाने के लिए, साक्षी अवस्था बनाने के लिए छठवीं बात है, कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। देखो याद है ना आपको। तो एक बाबा ही सर्व प्राप्तियों का भंडार है, तो एक बाबा को साथी बनाते हैं तो हमें सभी प्राप्तियां अनुभव होती जाती है। अगर हरेक प्राप्ति के लिए हम बुद्धि को इधर उधर भटकाते रहें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक बाबा को हमने साथी अनुभव करना है तो उसके लिए इस पुरानी दुनिया से साक्षी होकर रहना जरूरी है। सातवीं बात है, ये जो साक्षी अवस्था बढ़ाना चाहते हैं तो बाबा ने कहा है ये पुरानी दुनिया जड़ जड़ी भूत बन चुकी है। कोई मकान जड़ जड़ी भूत बना हुआ रहता है उसको खंडहर कहते हैं, उसमें रहना माना जान की जोखिम लेना, क्योंकि वो मकान कभी भी गिर सकता है, कभी भी हमें मार सकता है। तो इसलिए ये पुरानी दुनिया इतनी खंडर बन चुकी है, यहाँ पुरानी दुनिया से बुद्धि को लगाना, लगाव में रहना, उसमें दिलचस्पी रखना अर्थात जान से जोखिम लेना। इसलिए इन सभी बातों को अगर हम बुद्धि में रखते हैं तो स्वतः ही साक्षी दृष्टा सहज अनुभव करते हैं। अभी साक्षी दृष्टा किसको कहते हैं? मान लीजिए दिल्ली में जितने भी भारत में बड़े बड़े देश हैं उनके सभी राजदूत रहते हैं, है ना, एम्बेसडर के रूप में उनके राजदूत रहते हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए काम करते हैं। भारत में अगर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, जान मान का नुकसान होता है, कुछ अपना जो धन संपत्ति है उसके कुछ में ऊपर नीचे हो जाता है टैक्स में, उन पर कोई असर नहीं होता है, है ना। मान लीजिए नेपाल का राजदूत भारत में दिल्ली में बैठा है, नेपाल में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके चेहरे पर उसकी रेखाएं दिखाई देती हैं। तो क्योंकि वो नेपाल के लिए सोचता है, नेपाल के लिए काम करता है, उसका भविष्य नेपाल से जुड़ा हुआ है, ऐसे हमारा भविष्य परम धाम से और नई दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो यहां रहते हुए बुद्धि हमारी उस नई दुनिया से जुड़ी रहे, इसलिए यहां से साक्षी और उस दुनिया से साथी बनकर हम रहे। हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहते हैं लेकिन साकारी दुनिया में सेवा करते हैं, हम बच्चों को मदद करते हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ युक्तियां बताते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, अनुभव कराते हैं। शिवबाबा भी देखो परम धाम में बैठा है और ये पुरानी दुनिया में जो ड्रामा चल रहा है इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई प्यार कर रहा है, बाबा साक्षी डिटैच होकर देखते हैं। उसको कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर, डिटैच होके ऑब्जर्व करना, देखना, न्यारे रहना। तो हमें ब्रह्मा बाप समान, शिव बाबा के समान ऐसी साक्षी दृष्टा स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। तो बाबा को ही हमें साथी बनाना है, किसी व्यक्ति को नहीं बनाना है, वस्तु को नहीं बनाना है। क्यों भाई, बाबा को ही क्यों बनाना है? हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ जी एक साधे सब साधे, बिल्कुल अच्छी बात है भाई जी की। देखो हम साथी किसको बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ बातें उसमें देखते हैं, पांच बातें उसमें विशेष देखते हैं। देखो पहली बात, साथी हमारा सुंदर हो, ऐसी नहीं ना बेढंगा हो, चढ़ा खड़ा हो, ऐसा सुंदर हो। दूसरी बात, साथी हमारा कल्याण चाहने वाला हो, बेहद का कल्याण चाहने वाला हो। तीसरी बात, वो सत्यवादी हो, झूठा न हो, झूठापन किसी को पसंद नहीं आता है। तीसरी बात है वो कैसा हो, माला माल हो, उसके पास बहुत माल होगा ना, उसको साथी हर कोई बनाना चाहता है ना भाई। और पांचवी बात, जो अंत तक साथ निभाता है उसको लोग अपना साथी बनाते हैं। तो ये पांचों विशेषताएं केवल बाबा में ही है, किसी व्यक्ति में वो नहीं है, इसलिए हमने बाबा को ही साथी बनाना है। क्योंकि आप देखेंगे अंतिम समय जब माहौल बहुत खतरनाक होगा, बहुत नाजुक होगा, उस समय आपको मदद करने के लिए आपका साथी ही दौड़ेगा, आपका दोस्त ही दौड़ेगा। और वो पावर, वो दमखम केवल बाबा में ही है और किसी में है ही नहीं। ऐसे नाजुक समय में मदद करने की क्षमता उस सर्वशक्तिमान बाप में ही है और किसी में है ही नहीं, है ना भाई। तो साक्षी के बारे में तो स्पष्टीकरण मिल गया, अभी बाबा को साथी अनुभव करने के लिए कौन सी बातों पर अभ्यास करना जरूरी है उस पर हम विचार करेंगे। पहली बात, बाबा को निरंतर साथी अनुभव करने के लिए हमें अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत बढ़ाना जरूरी है। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? हाँ जी, हाँ जी, किससे? हमारा सबसे जास्ती प्यार अपने देह से होता है। 24 घंटे कोई साथ में रहता है आपके? कोई नहीं रहता है। कितना भी नजदीक वाला संबंधी होगा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा रहेगा, बाद में चला जाएगा। लेकिन बाबा ही जो है वो शरीर ही है हमारे साथ, 24 घंटे रहता है। इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या करना है। इसलिए कहते हैं बाबा जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। बॉडी की कंपनी को त्यागते हैं तो गॉड की कंपनी मिलती है। अब बॉडी ने तो नीचे गिराया, गॉड हमें ऊपर उठाता है। इसलिए हमें बॉडी की कंपनी को थोड़ा धीरे धीरे त्यागना है और गॉड की कंपनी का अनुभव करते जाना है। देह में रहते हुए देह को साक्षी होकर देखना है। साक्षात कार माना, इस देह रूपी कार को साक्षी होके देखना। ये शरीर तो क्या है? एक तो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर तो एक वस्त्र है, शरीर तो एक मेरा मकान है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा समझकर इस शरीर को साक्षी होके देखेंगे तो धीरे धीरे बाबा की याद हमारी बढ़ती जाती है। तपस्या हमने यही करना है। जितने भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई उसका सीक्रेट क्या है, जवाब एक ही मिलेगा, बाबा के पास आके हमने विदेही स्थिति का अभ्यास खूब बढ़ाया। तो हमने क्या करना है? देह से न्यारा चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है। कि देह का उल्टा क्या होता है? हदे। देह हदे। तो देह समझने से हम हदों में ही रहते हैं और देह को भूलने से बेहद में रहते। सारा विश्व ही मेरा परिवार है, हम सभी एक पिता के बच्चे हैं। इसलिए पहली बात है देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना। ठीक है भाई, देह से न्यारे हो गए, डिटैच हो गए। अब यहां से ऊपर आपको जाना है तो ऊपर कौन लेके जाएगा भाई? बताओ, ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा? हाँ जी, एरोप्लेन देखो इतना लोगों को लेके उड़ता है, लेकिन उड़ाता कौन है? पेट्रोल। ऐसे ये आत्मा तो डिटैच हो गई, उसको बाबा के पास ले जाने का काम करता है ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा नहीं होगा तो बुद्धि इसी दुनिया में भटकती रहेगी, मटकती रहेगी। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ऊपर जाना है, ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले को याद कर सकेंगे। ऊपर वाला राम जो है ना, वही हमारा कल्याण करता है ना। इसलिए नशे में झूमते रहना है, मस्ती में मस्त रहना है, तो ऑटोमेटिक बुद्धि हमारी, मन बुद्धि यहां से परम धाम की ओर जाती है, बाबा के पास बिठा देती है। तो ईश्वरीय नशे का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है भाई, बताइए, बोलिए ना। देखो आगरा के बाबा के महान बच्चे यहां बैठे हैं, ये बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं, इसमें एक भी साधारण नहीं है। भाई ताली तो बजाओ जरा। एक एक का सिलेक्शन करोड़ों में किया है और कोई अधिकारी ने नहीं किया है, स्वयं भगवान ने किया है। सबसे बड़ी हस्ती दुनिया की उसने किया हुआ है। तो कितनी रॉयल आत्माएं हैं आप सोचो। हाँ जी, ताली अच्छी तरह से बजाते ही नहीं आप, ठंडे ठंडे बजा रहे। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्म अवतरण में। तो शिव बाबा कहता था, ब्रह्मा बाबा मुझे कभी कभी आपके बच्चों पर हंसी आती है। क्यों? मैं उनको इतना ऊंची नजर से देखता हूं, वो पता नहीं क्यों अपने को साधारण समझते हैं। भाई ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेगा ना, ब्रह्मा कुमार होने के कारण। नहीं बाबा, धीरे धीरे उनको नशा चढ़ेगा। भाई हमें नशा क्यों नहीं चढ़ता है? हर रोज पालना मिल रही है, ये बगीचा बागवान हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है जितना चढ़ना चाहिए। बोलो ना क्यों नहीं चढ़ता है, बोलिए ना। हाँ जी, समान को भूल जाते हैं। हाँ जी, सेंटर पर आप जाएंगे ना, मुरली सुनेंगे, झूमते रहेंगे मस्ती से, क्या मुरली बाबा के। जैसे सेंटर से नीचे उतरेंगे, बाहर जाएंगे, सोड़ा वाटर नशा आ गया। इतनी सारी भगवान की मेहनत चली गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना भाई। चार दीवारों में तो मस्त झूमते हैं। कुछ भी हो बाहर का वातावरण, हमारा नशा हमने गायब नहीं होने देना है। ये सिंहासन हमने भगवान ने दिया है हमें। कोई मिनिस्टर होता है छोड़ता है स्थान अपना, खूब कमाई करता है। ये भगवान ने हमें सम्मान का सिंहासन दिया है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। कोई कितना भी हमारा अपमान करे, ग्लानी करे, ऊंचा नीचा बोले, व्यवहार करे, कैसा भी, हमने इस पर डटे रहना है, बैठे रहना है। क्योंकि बहुत प्राप्तियां कराने वाला ये सिंहासन है। हमारी आत्मा में रॉयल संस्कार धारण करने वाला ये सिंहासन है। होनहार राजे महाराजे इसी सभा में बैठे हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जैसे परम धाम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे और नीचे आएंगे, सिंहासन राजा महाराजा का मिलेगा, चेहरे पर वो मस्ती खुमारी होनी चाहिए, है ना? तो कैसे होंगे? अभी से हमने सिंहासन पर बैठे रहना है। बाबा ने हमारी उन्नति करने के लिए हरेक बच्चे को समान का सिंहासन दिया है। पता है तुम कौन हो? तुम शिव शक्ति हो, तुम शेरनी हो, तुम दुर्गा हो, तुम महाकाली हो। मैं दुर्गा हूं, महाकाली हूं, बाथरूम में काकरोच, अरे बाप रे बाप, इसको हटाओ, इसको। कहां से दुर्गा हूं? फिर बाबा दूसरे दिन आता है, मैं सदा सत्य बोलने वाला हूं, पता है तुमको? तुम शेरनी हो, तुम शिव शक्ति हो। जिन्होंने उसको स्वीकार किया और उस पर बैठकर इसका अभ्यास किया, वो हमारी दादिया दीदिया देखो शेरनी बन चुकी हैं, ललकार रही हैं, बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंज दे रही हैं, मंडलेश्वरों को। ये है समान का चमत्कार। यज्ञ के शुरू में भगवान ने इस पॉलिसी को अपनाया। छोटी छोटी बच्चियां जो माताएं आई थी, उनका अनेक जन्मों का गिरा हुआ समान बाबा ने ऊंचा उठाया, उनकी सारी शक्तियां जागृत होने लगी और आज देखो वो प्रैक्टिकल साक्षात शक्ति स्वरूप बन गई। यह है सोमान का चमत्कार। सोमान माना स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे मुझे उससे परवाह नहीं है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। भगवान ने मुझे बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है तो भगवान को मेरे पर निश्चय है, लेकिन मुझे अपने पर निश्चय नहीं है, इसलिए नशा नहीं चढ़ रहा है। क्यों नशा नहीं चढ़ रहा है भाई, बोलो ना। सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे रानी महारानी के रूप में हमने पार्ट बनाया बजाया, और जैसे द्वापार में आए माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। कितने साल? 2500 साल तक जेल में ठोक दिया। उसके कारण जो हीन भावना है कूट कूट कर भरी पड़ी है वो हमें ऊपर आने नहीं देती है। इसलिए द्वापार कलयुग को नहीं देखना है, हमें सतयुग त्रेतायुग को देखना है और जो खोया हुआ सोमान है उसको पुनः प्राप्त करना है, है ना? राजा महाराजा बनने वाली आत्माओं के चेहरे पर और उसमें भी विशेष आंखों में ईश्वरीय नशे की झलक और फलक दिखाई देती है। देखो है ना, शराबी दो बोतल चढ़ाता है आंखें लाल हो जाती हैं, गटर में पड़ा रहता है, मैं तो स्वर्ग में हूं। अरे स्वर्ग गटर में नहीं, नहीं स्वर्ग में हूं। तो हमें भी जब ईश्वरीय नशे का पावरफुल डोज बाबा चढ़ाता है तो आंखों में वो नशा दिखाई देता है, और हम ये पुरानी दुनिया में घटिया दुनिया में नहीं अनुभव करते, हम तो हमारी अलौकिक दुनिया में सूक्ष्म वतन में नई दुनिया में वैकुंठ की दुनिया में चल रहे हैं। ऐसा सुंदर अनुभव सभी करते भाई, ताली तो बजाओ। नशा शान उल्टा है, ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है, आत्मा की ज्ञान है, आन और बान है। ईश्वरीय नशे के बिना आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, बेजान है। ब्रह्मा कुमार की ड्रेस है ये सफेद कपड़े, तो ईश्वरीय कुमार सभी ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर कुमार की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। वो ड्रेस पहनकर ही हमने सेवा क्षेत्र पर उतरना है ना? तब आप देखेंगे नशा होते ही आपका मन और बुद्धि बाबा के पास ऑटोमेटिक जाता रहेगा और साथीपन की अनुभूति होती रहेगी, ठीक है ना? सारे दिन और नशा का परसेंटेज बढ़ते रहना। एक साल पहले जो नशा था वह भी बढ़ गया, उससे और बढ़ गया और दूसरे साल बढ़ गया। यह है उन्नति की निशानी, समझा? हल्कापन बढ़ते जाना और नशा बढ़ते जाना, यह है प्रोग्रेस की निशानी, ठीक है? तीसरी बात, बाबा को साथी अनुभव करने के लिए बाबा से प्यार को बढ़ाते जाना है। आप कहेंगे बाबा से तो प्यार है इसलिए तो यहां बैठे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिगरी प्यार चाहिए, हड्डी प्यार चाहिए, जो दादियों में देखा। हमारा प्यार बाबा से है लेकिन वो जिगरी प्यार नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि चुंबक प्यार एक ऐसी चुंबक की शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मूलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने ही नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। सबसे पावरफुल मैग्नेटिक पावर है ये, इसलिए कहते जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुड़ जाती है, जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार जुटी रहती, जितना प्यार उतना बुद्धि की तार ऑटोमेटिक जुटी रहती, जोड़नी नहीं पड़ती। हम ठगी करते हैं बाबा से, दिल के टुकड़े हजार हो गए, कोई कहां गिरा कोई कहां गिरा। बाबा से प्यार है लेकिन घर से प्यार है, माँ से प्यार है, चाचा से प्यार है, उससे प्यार है, इससे प्यार, ठीक है बाबा आपके आपसे भी है। बाबा कहते हैं ठगी कर रहे हैं, थाली में भोजन काके थोड़ा सा रखा, भाई कहेंगे आतम भाई आपके लिए भोजन रखा है, झूठा भोजन मैं खाऊंगा। तो हमने इधर उधर प्यार बांट फूट के दिया और थोड़ा सा बाबा को दे रहे हैं तो ये झूठा प्यार हो गया। बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदा करूं, और है क्या आपके पास? बेघर माना बेघर, ये भी घर किराए से लेके रखा है, आपके पास है क्या? केवल दिल का प्यार की पूंजी इतनी सी बची है। सुदामा के पास चावल था, ऐसे दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, उसका सौदा मैं करने के लिए आया हूं 5000 वर्षों के बाद। बोलो करोगे? बोलो ना, बाबा पूछ रहा है करोगे? मैं पक्का सौदा करूं, जितना मुझसे प्यार करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होगा, है ना भाई? ये दुनिया का नियम है, जैसे को तैसा, ये तो भगवान है। इसलिए दिन प्रतिदिन प्यार हमारा बढ़ता रहे। कितनी प्राप्तियां हमें हो रही हैं आप सोचो तो सही, प्यार बढ़ता ही है प्राप्तियों से। संगम युग में कितने खजाने दे रहा है सतयुग, 21 जन्मों के बाद से ही तो दुनिया की कोई शक्ति हमारे से छीन नहीं सकती, इतनी अथाह प्राप्तियां दे रहा है। प्यार होना चाहिए कि नहीं भाई, बोलो ना। और एक बार हनुमान का और इसका आपस में डायलॉग हो रहा था, सीता का और हनुमान का। हनुमान कहते सीते देवी आपका राम से जास्ती प्यार है या मेरा है? अब सीता कहते मेरे तो वो पति देव है, मेरा ही जास्ती है। कहते सीता देवी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं क्या? मैं उनका परम भक्त हूं, आपसे बढ़कर मेरा उनसे प्यार है। तो सीता कहती क्या प्रमाण है? तो सीधा उसने छाती फाड़ के दिखाया। तो हम भी क्या करें, देखो देखना है तो देखो, हमारे दिल में बाबा ही बाबा बैठा है। कहाँ रहते हो आप? आगरा में कहाँ रहते हो? ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते, हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। क्या बात है भाई, कितने भाग्यशाली है, भगवान ने दिल ही दे दिया अपने को, है ना? तो कहने का मतलब है बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा तो बाबा को साथी अनुभव करते जाएंगे और बहुत सुंदर बाबा की कंपनी को एंजॉय करते जाएंगे। उनकी कंपनी इतनी सुखद है, इतनी सुखद है, सात चीजों के वो सागर है, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद शक्ति की, सात चीजों के सागर है। उनकी कंपनी में बैठने से कितना आनंद आएगा आप सोच सकते हैं? आता है ना? तो छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए ना कंपनी उनकी। हमारा यही दिल गाता रहे तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, ना देखू तुझे तो खिले न जिया। आपको एक पल भी नहीं देखती हूं मेरा जिया, लगता ही नहीं मैं खिलता ही नहीं है, इतना प्यार हमारा बाबा से हो तब तो मजा है, है ना भाई? गीत भी हमारे दिल से निकलता जाए, कौन सा गीत? हो जीवन साथी साथ में रहना और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, ओ जीवन साथी, ओ जीवन साथी, ओ जीवन साथी साथ में रहना, ओ जीवन साथी साथ में रहना। भाई बजाओ ताली जरा। चलो सीधा बैठ रहे साहब, 15 मिनट गायब हो जाएंगे यहां से। सारी कोई सुस्ती तो नहीं किसी के पास? नहीं तो बगाना है तो ताली बजाना है क्या? कि सभी सीधा बैठो, ऐसा बुढ़े की तरह नहीं बैठो, ऐसा बैठो। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हूँ। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मौजा आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओ सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पंज की चमकीली, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर, हल्की हल्की फुल्की ड्रेस यहाँ, ओहो फरिश्तों के बादशाह, प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे, अति मीठे, शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा, मुआज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाब की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाब की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, शांति ही शांति, परम शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिवपिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की प्रचंड स्रोत है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रहे होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य थी पिता से प्रचंड शक्तियां आनंद शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे, भस्म होती ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुके हूँ। शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। ओम शांति
ओम शांति। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति
धारणाओं की धनी, योग की मूरत, प्यारे बाबा से अटूट और आत्मीय स्नेह करने वाले आदरणीय भाई साहब का आज की इस क्लास के लिए हम सभी ब्रह्मावत्सों की ओर से दिल से हार्दिक धन्यवाद है भाई साहब। एक हाथ की ताली से हम सभी आदरणीय भाई साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप परम प्रकाश प्यारे बाबा से संपूर्ण विश्व की आत्माओं के प्रकाश को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे आत्म प्रकाश भाई जी आपका दिल से बारंबार शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद।